नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता। नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत के राहत कार्यों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। और यूक्रेन के बुखा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादौर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए DNA सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण भारत के लिए और विश्व के लिए था। इस दौरान विनिर्माण, AI और डिजिटल, वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण और आधुनिक प्रौद्योगिकी में संभावनाएं थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार, UPI, डिजी लॉकर, ONDC तथा इंडिया स्टैक सहित भारत का डिजिटल जन बुनियादी ढांचा बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शिकागो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका भारत रणनीति भागीदारी मंच के साथ मिलकर किया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित बुखा जिले में हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई घर और एक रेस्टोरेंट भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मायला गांव में एक गोदाम पर हमला हुआ जिसके बाद विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में लगातार हवाई हमले तीसरे दिन भी जारी रहे जिससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नौसेना ने हाल ही में दावा किया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसका निर्णायक नियंत्रण है और अमेरिका का यह दावा झूठा है कि यह मार्ग खुला हुआ है। IRGC ने कहा कि ईरान के बिना समन्वय के कोई भी जहाज इस जलमार्ग से नहीं गुजर सकता। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपनी कार्रवाई और नीतियां बंद नहीं करता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता। नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार, आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। और यूक्रेन के बुखा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।